हरे कृष्ण ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् श्रीकृष्णचैतन्यप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। समय बहुत हो चुका है, कितना मिनट बाकी है हमारे लिए? 15 मिनट। हरे कृष्णा, कोई बात नहीं। संक्षेप में डॉक्टर सावी ने जो कहा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा विषय लंबा था लेकिन संक्षेप में करेंगे उसको। तो ये जो संघर्ष है हमारे जीवन में, वो लगता है कि हमारी जो अपेक्षाएं हैं उसके बीच में और हमारे जीवन का जो सत्य है उसके बीच में, हमारे जीवन में जो अपेक्षाएँ होती है वो हमको एक तरह से सोचने के लिए मजबूर करती है, और जीवन का जो सत्य है जो जीवन में होता है वो बहुत बार हमारी अपेक्षा के खिलाफ होता है, और तब जाकर स्ट्रेस और डिप्रेशन, निराशा, दुख ऐसा सब शुरू होता है जीवन में। तो हमें समझना जरूरी है कि जो जीवन है हमारा, भगवान ने बाइबल में कहा है, जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहते हैं कि इस दुनिया में अगर आपको खुश होना है, डॉक्टर साहब बता रहे थे अभी, खुश होना चाहिए। तो जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि इस अगर दुनिया में खुश होना है तो इस जीवन में सबसे पहले खुश होने का प्रयास करना छोड़ दो। इफ़ यू वॉन्ट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, स्टॉप अटेम्प्टिंग टू ट्राइंग टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि इसका सपोर्ट भगवद्गीता में भगवान कृष्ण ने दिया है। वो कहते हैं कि माम उपेत्यंतु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम। वो कहते हैं कि हमने इस दुनिया को बनाए ऐसे है कि ये दुखों का घर है और ये अशाश्वत भी है, टेम्पररी भी है। जैसे हम लोग टीवी लेते हैं ना घर पे अपने, तो टीवी के साथ साथ एक आता है किताब आती है, कैसे टीवी को इस्तेमाल करना है। या हम लोग फ्रिज लेते हैं उसके बाद एक किताब आती है, अगर हम ओवन लेते हैं तो एक किताब आती है, हीटर लेते हैं उसकी किताब आती है। तो अगर हम ओवन खरीदते हैं जो गर्म करने वाली वस्तु है, उससे हम किस चीज़ को ठंडा नहीं कर सकते, और फ्रिज में हम किस चीज़ को गर्म नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि वो बनाए इस तरह से। तो अगर हम कोई व्यक्ति अगर फ्रिज में बर्तन रख के किस चीज़ को गर्म करने का, उबालने का प्रयास करेगा तो क्या होगा उसका नतीजा? वो गर्म तो होगा नहीं और ठंडा हो जाएगा उसका। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में, हाँ, दुनिया के दो भाग हैं, एक आध्यात्मिक दुनिया और एक भौतिक दुनिया। तो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, इस शरीर को धारण करके, देह धारण करके, वो भौतिक दुनिया है जिसमें जन्म और मृत्यु का चक्र चलते रहता है, बुढ़ापे और बीमारी का भी। तो उस जीवन में जो भौतिक है, जिसका शुरुआत और अंत है, ऐसे जीवन में अगर हम सच्चा आनंद को खोजने का प्रयास करेंगे तो वो नहीं मिलेगा यहाँ पर। केवल शरीर का सुख यहाँ ढूंढेंगे थोड़ा बहुत मिलेगा। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं तुकाराम महाराज, वो कहते हैं कि सुख जवा पाड़े दुख पर्वत आयोड़े। इस दुनिया में जब पर्वत जैसा दुख आदमी सहन कर लेगा तो थोड़ा सा उसको खुशी मिलेगा, और दोबारा उतनी खुशी उसको चाहिए तो दोबारा उसको पर्वत जैसा दुख को सहन करना पड़ेगा। इस सत्य को जब तक हम नहीं स्वीकार करते हैं, ये कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये सच्चाई का ज्ञान है। अगर हम जलेबी की दुकान में जाएंगे तो करेले की सब्जी नहीं मिल सकती हमको, वहाँ मिठाई मिल सकती है। उसी तरह से हम किस चीज़ से साथ डीलिंग कर रहे हैं जीवन में, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये दुनिया जिसने बनाई है उसका क्या कहना है, ये सुनना भी बहुत ज़रूरी है। वो बार बार कुरान के माध्यम से, बाइबल के माध्यम से, गीता के माध्यम से, बोधि संहिता के माध्यम से, तौरा के माध्यम से बता रहे हैं कि मैंने दुनिया कैसे बनाई है, किसके लिए बनाई है, किस चीज़ के लिए बनाई है, क्या उसका उद्देश्य है। और इस दुनिया में जीते हुए अगर हम इस दुनिया के उद्देश्य के खिलाफ अगर कुछ अपेक्षा रखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो हम निश्चित ही निराश हो जाएंगे। इसलिए ये जो स्ट्रेस की बातें यहाँ पर हो रही थी, ये बहुत हकीकत है, वास्तव है जीवन का। हम सब लोग स्ट्रेस को सामना करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। लेकिन अगर हम सत्य को एक्सेप्ट करना सीखेंगे तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं एकदम सिंपल घर का एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर हमारे पति या पत्नी, उनको समय पर आने की आदत नहीं फॉर एग्जाम्पल, और हम लोग बड़े समय के पाबंद हैं, तो हो सकता है जीवन भर उनका स्वभाव नहीं बदलेगा। हो सकता है उनकी आदत ही ऐसी बनी हुई है। डॉक्टर साहब कह रहे थे स्वभाव जो है ना बहुत मुश्किल है बदलने के लिए, मराठी में कहते स्वभाव वाला औषध नहीं। उसी तरह से तो अगर आपको इस वैवाहिक जीवन में अगर शांति से जीना है तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि ये ऐसा ही है, ये नहीं बदल सकता है। तो हर टाइम ब्लड बॉयल करने की और बीपी बढ़ाने की जरूरत नहीं, जब वो देर से आता है या आती है। एक सिंपल एग्जांपल दिया मैंने घर के आपका, उसी तरह से इस जीवन में बुढ़ापा आएगा। किसी ने कहा कि बचपन कितना, बचपन के दिन क्या दिन थे। हाँ, हमने बचपन में गाना भी सुना था पिक्चर का। बचपन के दिन क्या दिन थे। तो लेकिन बचपन जाके एक दिन जवानी आएगी, और एक दिन वो भी जाएगी और बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा आने के बाद में पैर दुखेंगे, सर दुखेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, डायबिटीज होगा, ये सब होने वाला है। आप कितना भी कोशिश करो, आपको योगा जरूर करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, शरीर के लिए कसरत करना चाहिए, खुले हवा में घूमना चाहिए, लेकिन फिर भी बुढ़ापा आएगा। कितना भी हम लोग कोशिश करेंगे, सर के बाल सफ़ेद होंगे, और एक दिन चेहरा जो अभी चिकना है वो एकदम उसका क्या कहते हैं उसको लाइन्स आ जाएंगे उसके अंदर, मराठी में कहते हैं सुरकुतिया, मतलब रिंकल्स आ जाएंगे उसके अंदर। और एक दिन हम लोग बिस्तर पर पड़ेंगे, और एक दिन हमारी अर्थी भी निकलेगी। हाँ, कभी दफना जाएंगे या तो कभी जलाए जाएंगे। ये सब जीवन का सत्य है, इस सत्य को हम नहीं टाल सकते कभी भी। तो इसी विषय का अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर हम विचार करेंगे तो हमको समझना है कि जीवन के कई सारे सत्य ऐसे हैं जो हम बदल नहीं सकते। जैसे हवा का झोंका है और हम समुद्र में नौका से विहार कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, जहां से हवा आ रही है उस दिशा में हमारे जो क्या कहते हैं उसको शीड बोलते हैं मराठी में उसको, वो बदल देंगे ऐसे दिशा, और वो हवा का लाभ लेते हुए आगे जाएंगे। हम हवा का लाभ लेने उल्टा नहीं ले सकते हैं, जिस दिशा में हवा जा रही है उसमें जहाज लेके जाना पड़ेगा, हम जल्दी से जा सकते हैं, थोड़ा बहुत दिशा बदलेगी लेकिन उस दिशा में तेजी से जाएंगे। उसी तरह से जीवन में अगर हमको जीना है तो दुनिया का स्वभाव क्या है और सच्चाई क्या है उसको समझ के हमको चलना होगा। इसीलिए भगवान पर विश्वास रखना और भगवान को मानना बहुत जरूरी है। जो हमारा जो आज का सिविलाइजेशन है, संस्कृति है, ये अल्लाहहीन भगवानहीन बन गया है। उसको छोड़कर सब लोग इस दुनिया में आनंदी होना, सुखी होना और मजा करना चाहते हैं। लेकिन जैसे कि रावण ने क्या किया था, राम को बाजू में रखकर सीता का भोग लेना चाहता, इसलिए उसका विनाश हो गया। हम लोग क्या करते हैं, नारायण को छोड़कर लक्ष्मी का भोग लेना चाहते हैं, हाँ, भगवान को छोड़कर उसकी प्रकृति का भोग लेना चाहते, इसमें कभी भी यश नहीं मिलेगा। अगर हमको जीवन में सच्ची कुछ चीज़ का आनंद लेना है तो भगवान को लेकर लेना होगा, क्योंकि उन्होंने ये सृष्टि को बनाया है, उन्होंने हमको भी बनाया है, उन्हें हमारे शरीर को भी बनाया है, इस प्रकृति को भी बनाया है, और हमारा जो कॉम्बिनेशन है एक्टिविटीज जो कर्म करते हैं हम लोग, वो सब भी उन्हीं के द्वारा उनके निर्देश में उनके कंट्रोल में होता है। हम लोग उसके कंट्रोल बनना चाहते हैं, नियंत्रक बनना चाहते हैं, लेकिन ये नियंत्रण हमारे हाथ में कुछ हद तक है। किस हद तक है, समझो अभी हमको इच्छा लगी कि हमको अभी 6 माइल से कूदना है नीचे, हम वो निर्णय ले सकते हैं, उतने हद तक हम कंट्रोलर हैं, लेकिन कूदने के बाद में हड्डी टूटेगी कि दिमाग फूटेगा वो नहीं होना चाहिए, ये हम नियंत्रण नहीं कर सकते। हम 50 जलेबी खाने का निर्णय ले सकते हैं और खा भी सकते हैं उसको, लेकिन उसके बाद में हजम हो जाएगा कि 10 लगेंगे, ये कंट्रोल हम लोग नहीं कर सकते। हाँ, कोई व्यक्ति शराब पीकर वेश्या के पास जाएगा और आनंद लेने का प्रयास करेगा तो उसको एड्स होना है कि नहीं होना है ये वो चुन नहीं सकता है, जो होना है वो होना होते ही जाएगा। इसलिए नियंत्रक हम केवल कार्य करने का निर्णय ले सकते हैं हम लोग, लेकिन कार्य का जो अंजाम है, जो फल है, वो किसी और के हाथ में है। इसलिए हमको जानना चाहिए कि ये हमारे जीवन में भगवान का स्थान अविभाज्य है, वही वास्तविक नियंत्रक हैं, सब उनकी इच्छा से होता है। सब शास्त्र में कहा गया है कि पत्ता भी उनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं है। हाँ, तो उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना, ये सत्य को एक्सेप्ट करने का पहला स्टेप है, और उनकी इच्छा को समझना यह दूसरा स्टेप है। और उनकी इच्छा को समझना है तो हमको कुरान, बाइबल, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, अपने शास्त्र का अध्ययन करना पड़ेगा कि वो क्या कहना चाहते हैं हमको, उनका हमारे लिए मैसेज क्या है। अगर हम उनको समझेंगे तो वो कहते हैं कि ये जीवन जो है वो हमने आपको हमसे जुड़ने के लिए बनाया है, जैसे कि कोई जेल में किसी को डालते ना हम लोग प्रिजनर को, तो जेल वाले का उद्देश्य क्या होता है? ऐसा नहीं कि वहीं रहे जीवन भर, ऐसा नहीं, कुछ सजाएं ऐसी होती है कि जन्म ठेप हो जाता है, लेकिन आमतौर पर जेल क्यों बनाते हैं कि जो गुनहगार है उसको अच्छे समाज से अलग करके उसके गुनाह का जो है ना क्या कहते हैं उसको रिफॉर्मेशन, वो सुधर जाए, उस उद्देश्य उसको एक सजा मिलती है, फिर उसको रिहा किया जाता है उस उम्मीद से कि वो अपने गुनाह को समझे और दोबारा रिपीट नहीं करे उसको। उसी तरह से हम लोग इस सब लोग भगवान को छोड़कर, अल्लाह को छोड़कर, यहोवा को छोड़कर ये दुनिया में शरीर धारण करके अलग जीने के लिए आए हैं, लेकिन भगवान ने इसका ऐसा इंतजाम किया है अपने को उपदेश देकर कि दोबारा हम उनसे मिल जाएं, ताकि हमारी जो सच्ची आनंद की खोज है वो उनके संपर्क में उनको प्राप्त हो जाए। बाकी इस विश्व में जितनी इच्छा हम करेंगे, जितनी अपेक्षाएं रखेंगे, वो सारी अपेक्षाएं अल्टीमेटली फेल होते नजर आएंगे हमको, क्योंकि हमारे खुशी का कितना भी प्रयास करेंगे तो अंतिम हमारी सब खुशियां जो है मृत्यु के सत्य के द्वारा उसके टुकड़े होने वाले हैं। कितना भी हम प्रयास करेंगे, मृत्यु ऐसा एक सत्य है जो सामने आकर खड़ा रहेगा, सारी हमारी अपेक्षाएं, सारे प्लान सब वो फेल कर देता है। शौक के रूप में कभी आता है, कभी प्लान के रूप में आता है, कभी पता है हमको आने वाला है, टर्मिनल डिसीज किसको हो गया, किसी को कैंसर हो गया, उसको पता है कि हम लोग 6 महीने में 1 साल में मरने वाले हैं, लेकिन हार्ट अटैक एक्सीडेंट ये हमको बोल के नहीं आते, और ये जीवन की सच्चाई है। मृत्यु किसी भी रूप में आएगा लेकिन आना जरूर है उसको, तो इसको देखकर, इस कसौटी को, इस सत्य को देखकर हमको जीवन में चलना है। हम सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन जो अंतिम परीक्षा सबको समान आने वाली है उसकी परीक्षा कसौटी हम कभी तैयारी नहीं करते हैं उसकी। हाँ करते क्या, हमने MBBS किया, आपने वो एग्जाम नहीं दिया, आपने शायद MBA का दिया होगा, या किसी ने इंजीनियरिंग का दिया होगा, या किसी ने और टेक्नीशियन का दिया होगा, हर एक अलग अलग एग्जाम है, और हम खुश है कि हमको एग्जाम देनी नहीं पड़ रही, और आप भी खुश है कि आपको हमारे एग्जाम नहीं देनी पड़ रही है, मुझे भी खुश है कि मैं इनको इनकी एग्जाम मुझे देनी नहीं पड़ रही है, लेकिन सब लोगों को 100% एक एग्जाम जरूर देनी पड़ेगी, इससे कोई छुटकारा नहीं है, नो एक्सक्यूज, नो एग्जेम्पशन, नो क्या कहते हैं उसको ऑप्शन फॉर दैट, नो एडिकेटी, नो कंसेशन, नो क्या कहते हैं उसको आगे जब बढ़ने का भी मौका नहीं मिलेगा उसके लिए, हाँ ग्रेस मार्क भी नहीं मिलते उसके, सबको 100% वो एग्जाम देना ही पड़ता है। दुर्भाग्य से हम कोई भी व्यक्ति उस एग्जाम की तैयारी करते हुए नजर नहीं आता है। भगवान बार बार कहते हैं कि आप मुझे याद करोगे तो आप मेरे पास पहुंचोगे, और किसी चीज को याद करोगे तो उसके पास पहुंच जाओगे। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजते अंते कलेवरम, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, अगर मेरे पास सोचोगे तो मेरे पास आओगे, किसी अन्य विषय के बारे में सोचोगे तो उसके पास पहुंच जाओगे। हमको अभी इस जीवन में जब अपेक्षाओं का सागर मन में उमड़ पड़ रहा है, हाँ अनंत लहरें, ऐसे कहा गया कि जितनी सागर में लहरें हैं उससे अनंत गुना मन में इच्छाएं होती है और इतनी इच्छाओं को पूर्ण करते करते आदमी थक जाता है, और पता चलता है कि मैं कितनी इच्छाओं को पूर्ण करने का प्रयास किया लेकिन बहुत सारी इच्छाएं तो मेरी पूर्ण हुई नहीं, और बहुत सारी इच्छाओं का विपरीत परिणाम भी हुआ, क्योंकि जीवन इस तरह से बनाया गया है। इसलिए भगवान की इच्छा को समझना और उस इच्छा के लिए सर झुकाना, बाइबल में कहा गया है दाय विल बी डन ओ माय लॉर्ड, नॉट माय विल, दाय विल बी डन, आपकी इच्छा सर आंखों पर है। जैसे इन्होंने कहा कि अपने ईगो को थोड़ा सा कम रख के शांति से सत्य को स्वीकार करना चाहिए, यह जीवन के स्ट्रेस फ्री होने का एक इंपॉर्टेंट रहस्य है, टू एक्सेप्ट द विल ऑफ द लॉर्ड, ये जानते हुए। किसी ने कहा कि ज्ञान होना चाहिए, किसी ने कहा कि ध्यान करना चाहिए, और किसी ने कहा कि ज्ञान भी होना चाहिए, ये सच बात है। ज्ञान किस बात का होना चाहिए कि जो भी वो करते हैं हमारे लिए वो हमारे मन को शायद अच्छा नहीं लगेगा, जब मम्मी दवा देती है तो दवा कड़ी लगती है, अच्छी लगती नहीं, लेकिन वो हमारे अच्छे के लिए होती है। अगर हमको ये बात पर विश्वास है कि मेरी माँ मेरे लिए कुछ बुरा नहीं करेगी, तो हम माँ के द्वारा दिया हुआ दवा भी खाएंगे और लड्डू भी खाएंगे, दोनों हम प्रेम से खाएंगे। बालक जो है वो अज्ञानी होता है, वो क्या करता है डॉक्टर के पास जाकर बहुत लड़ाई करता है, उसको 4 लोग पकड़ते हैं फिर 1 सुई लगाई जाती है, लेकिन आप डॉक्टर पास जाते हैं डॉक्टर बोलते हैं आपको सुई लगाएंगे हम, तो बोला ठीक है लगा दो, क्योंकि आपको पता है कि आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। तो बालक में बड़े आदमी में केवल ज्ञान का फर्क है। उसी तरह से हम लोगों को अगर पता होता है कि जो भी हम कर रहे हैं और जो हमारे जीवन में हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए, तो हम उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए अगर किस सत्य को स्वीकारना है हमको नॉलेज होना बहुत जरूरी है कि ये हमारे अच्छे के लिए, और भगवान जो है वो किसी का कभी बुरा नहीं करते। आपको लगता है हमको कैंसर हो गया और आप कह रहे हैं कि हमारे लिए अच्छा हो गया, पता नहीं उस कैंसर के अंदर से आपको कितनी समझ बूझ, कितनी शुद्ध उपदेश शिक्षाएं और कितनी अनुभूतियां भगवान ने आपको दी होंगी। और अधिकतर हमारा अनुभव है कि दुख से, दुख भरे घटनाओं से हमको बहुत सीखने को मिलता है, और खुशियों में हम बहुत कम सीखते हैं, जीवन के सत्य को और जीवन के मूल्यों को। इसलिए दुख जो है ये जीवन का कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हमेशा, अगर हमारे अंदर दर्द नहीं होता, दर्द की सेंसेशन नहीं होती तो अच्छा होता कि बुरा होता? हाँ, क्योंकि अगर हमारा हाथ अगर आग में रखे, मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ और मुझे कोई दर्द की सेंसेशन नहीं है, मुझे हाथ गायब हो गया यहाँ से, हाथ है ही नहीं, लेकिन दर्द का सेंसेशन है, झट से मैं हाथ खींच लूंगा उसको, तो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, बुरा अच्छा है बिल्कुल। उसी तरह से जीवन में जब दुख आते हैं तो वो हमें भगवान की याद दिलाते हैं कि ये जगह जो है वो सुख खोजने की नहीं है, सत्य तो यह है कि ये दुख भरी जगह है, और इसको जो समझ जाएगा वो दुख में भी सुखी रहेगा। दुख में सुखी रहने का जो मूल मंत्र है वो ये, भगवान को स्वीकार करना और ये समझना कि भगवान हमारे लिए अच्छा ही करते हैं, कोई उनकी तरफ से बुरी चीज होती नहीं, क्योंकि वो ऑल परफेक्ट है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्, वो कंप्लीट एंड परफेक्ट है, उनकी तरफ से कोई अपूर्ण और बुरी चीज होती नहीं है। इस बात का जिसको अनुभूति हो गया है वो जीवन की हर स्ट्रेस को, हर संकट को, हर अपेक्षा नापूर्ति को स्वीकार कर सकता है, कि वो जानता है कि अगर इस बार मेरी अपेक्षा पूर्ति नहीं भी हो गई, इसमें भी भगवान का कुछ अच्छा है। हाँ, मैं आपको छोटी सी कहानी बताऊंगा और ये मेरा भाषण समाप्त करूंगा। एक राजा था जो सॉरी इसको किस कई लोग अकबर बिरबल की कहानी के रूप में बताते हैं, कोई लोग राजा और प्रधान के रूप में बताते हैं। एनीवे, तो राजा था एक बार, तो वो जब बैठा था और कुछ फल काट के खा रहा था तो उसकी उंगली कट गई। तो प्रधान ने कहा, आप समझ सकते हैं कि बिरबल ने कहा, बहुत बढ़िया, ये आपके अच्छे के लिए हुआ। राजा को बहुत बड़ा गुस्सा है, अरे इतना दर्द हो रहा है, खून बह रहा है और ये मेरा प्रधान कह रहा है कि अच्छा हो रहा है तुम्हारे लिए, उसको जेल में बंद कर दो। राजा है ना, वो अल्टीमेटली जेल में बंद कर देता है उसको। फिर राजा शिकार खेलने जाता है और शिकार खेलने के लिए बहुत जंगल में दूर चला जाता है और ऐसे गाँव में पहुँचता है जंगल के अंदर जहाँ पर कोई बहुत भिल्ले लोग, ऐसे बहुत पावरफुल लोग रहते हैं। तो राजा को अकेला पकड़ लेते हैं, राजा अकेला शूरवीर है लेकिन वो इतने लोगों को हावी नहीं हो सकता है, उसको पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं और सोचते हैं कि अच्छा देवी के लिए बलि मिल गया मुझे, और उसको पकड़ के बांध के नदी में नहलाते हैं, उसके वस्त्र उतार के नए वस्त्र पहनते हैं, उसको जेवर पहनाते हैं, उसको अलंकार पहनाते हैं, उसको माला पहनाते हैं और देवी के सामने लेके आते हैं। तो एक फाइनल एक पुजारी होता है, वो देखता है कि बलि जो है वो सही है कि नहीं, और सब शरीर जाँच करता है, बोलता है अरे इसकी उंगली कटी हुई है, इसका शरीर भंग हो चुका है, ये बलि के योग्य नहीं है, उसको छोड़ देते, जाओ आप धक्का मार के फेंक देते उसको, जाओ। राजा बिल्कुल भाग भाग के घर पे आता है और प्रधानमंत्री को रिहा कर देता है, कहता समझ गया मैं कि मेरे लिए अच्छा था, आपने कहा था ना अच्छा था मेरे लिए, हाँ मैं बच गया, अगर मेरी उंगली कटी नहीं होती उस दिन तो मुझे बलि चढ़ गया होता मैं। लेकिन मुझे बात बताओ कि मैंने आपको जेल में डाल दिया, ये कैसे अच्छा था? बोला साहब आप भूल गए कि शिकार को आप मुझे हमेशा लेके जाया करते थे, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे शिकार में लेके जाते और मैं बचता, मतलब आप बचते लेकिन मेरी बलि चढ़ती, इसलिए आपने मुझे जेल में डाला, ये भी मेरे लिए अच्छा ही था। लेकिन उस समय जब मैं जेल में डाला गया तब शायद मैं समझ में नहीं आया ये कैसे मेरे लिए अच्छा है, कुछ देर बाद में समझ में आया, है ना। राजा को भी उस समय जब उंगली कटी तो गुस्सा आया, समझ में नहीं आया कि मेरे लिए कैसे अच्छा हुआ, लेकिन जब उसको बहुत समय गया जेल में, जंगल में गया, बच गया उन भिल्लों के हाथ से, तब समझ में आया। और प्रधानमंत्री को विश्वास था लेकिन उसको समझ में नहीं आया कि कैसे मेरे लिए अच्छा है। जब राजा लौट के आया और बताया कहानी पूरी तो समझ में आया कि मैं भी बच गया इसके कारण। तो थोड़ा समय लगता है सत्य को समझने में, थोड़ा सा उसके लिए धीरज रखना चाहिए, पेशेंस। हाँ, सत्य को, सत्य हमारे लिए कैसा अच्छा है ये समझने के लिए आज परेशान मत होइए, आज आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, थैंक यू माय लॉर्ड आपकी तरफ से आया है। जीसस क्राइस्ट कहते हैं हे भगवान आपकी तरफ से प्याला आया है तो मैं उसको पी लूंगा, सोचूंगा नहीं उसके अंदर अमृत है कि विष है, क्योंकि वो आपकी तरफ से आया है मेरे लिए अच्छा ही होगा, इसलिए बिना सोचे मैं उसको पी लूंगा। उसके बाद में जो परिणाम होगा उसका तब आपको समझ में आएगा कि आपके लिए कैसा अच्छा था। इसलिए अगर जीवन में, जीवन के संघर्ष से आपको मुक्त होना है, संघर्ष तो करना है लेकिन संघर्ष के परिणाम से, दुख से मुक्त होना है, तो हमको सत्य को स्वीकार करने के लिए पेशेंस से थैंक यू बोलना पड़ेगा और फिर उसको जब भगवान आपको अनुभूति देंगे तो अपने आप आपको समझ में आएगा आपके लिए कैसा अच्छा था। अब ये फिलॉसफी बहुत सिंपल है, लगता है बहुत सिंपल है लेकिन अमल में आने का बहुत डिफिकल्ट है। तो उसका एक नुस्खा ऐसा भी है, अगर आपको ये समझने का पावर आपके अंदर आना चाहिए तो आपको नियमित रूप से उनका नाम का जप करना होगा। हाँ, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको तस्बीह करनी होगी, अल्लाह बस्मा बिस्मिल्लाह का नाम पुकारना पड़ेगा। अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको रोजरी करनी पड़ेगी, अगर आप हिंदू हैं तो आपको माला करनी पड़ेगी, और आप किसी और पंथ में होंगे तो ध्यान करना होगा, योग में आपको बैठकर भगवान की याद करनी होगी। लेकिन ये न कितना प्रकार है, किसी प्रकार से आपको भगवान से संपर्क जोड़ना होगा, और इस समय के लिए बताया गया है कि भगवान का संपर्क जोड़ना है तो उनका नाम ही एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसको हम तुरंत उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं। और ये नियमित रूप से जब हम जप करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, तो धीरे धीरे हमारे मन पर नियंत्रण आता है और हम सत्य को स्वीकारने की शक्ति प्राप्त करते हैं, एक्सेप्ट करना सीखते हैं जीवन में सच्चाई क्या है। कुछ सच्चाई बदल नहीं सकते हम लोग, अगर हम काले रंग के हैं तो हम गोरे नहीं हो सकते, अगर हमारे बाल गंजे हो जाते हैं 15 साल की उम्र में तो हम कुछ बदल नहीं सकते, उसको कितना भी सर्जरी करके चेंज नहीं कर सकते। कुछ सच्चाइयाँ हम जीवन में नहीं बदल सकते, लेकिन भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमें न केवल सच्चाई को स्वीकार करने की शक्ति मिलती है, लेकिन हम समझ जाते हैं कि सच्चाई इस प्रकार से क्यों है, व्हाई दिस इज लाइक दिस, वो भी समझ जाते हैं। और यही संक्षिप्त में, समय बहुत कम है, यही जीवन का हमारा सार है, हर संघर्ष से मुक्त होने के लिए, हर कसौटी से मुक्त होने के लिए, और कसौटी में विजयी होने के लिए, यशस्वी होने के लिए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करके हमको सत्य को स्वीकारना है, और वो भी भगवान की सहायता से स्वीकारना है। सत्य को स्वीकारने की शक्ति भी उनकी तरफ से आती है। हम लोग कहते हैं हमें तो कंगाला, हम तो हृदय से कंगाल है, क्योंकि हम लोग भौतिक दुनिया में यहाँ पर शरीर धारण करके जन्म मृत्यु के संघर्ष में भाग रहे हैं, लेकिन आत्मा होने के कारण और आत्मा भगवान का अंश होने के कारण उन्हीं की तरफ से सब शक्तियाँ आती हैं, सारी परिपूर्णता जो जीवन की है उन्हीं की ओर से आती है, क्योंकि वो सर्व परिपूर्ण है और हम भी उनके ही अंश हैं। लेकिन अंश का परिपूर्णता पूर्ण से मिलने में है, जब अंश पूर्ण से मिल जाता है तो वो परिपूर्ण जाता है। जब तक चिंगारी आग में रहती है उसको मीनिंग रहता है, जब वो आग से बाहर निकलती है तो वो बुझ के खत्म हो जाती है। तो हम भी वैसे ही चिंगारी हैं, भगवान अग्नि की तरह है, और हमेशा हमको उनके साथ मिल के रहना चाहिए, उनके भावना में, उनकी चेतना में, उनके प्रेम में और भक्ति में रहना चाहिए, जिससे जीवन के सारे संघर्ष जो है हमारे बिल्कुल आसान हो जाएंगे हमारे लिए। इस हमारा अनुभव है, संतों का अनुभव है, भगवान ने स्वयं लिखा है, सब तरह से इसके अनुकूलता है इस बात के लिए। इसलिए ये न कितने प्रकार हमें हमेशा भगवान के साथ में जुड़े रहना चाहिए, सुख में हो या दुख में हो, संघर्ष में हो या सुकून में हो। ये आपको सबसे विनती करूँगा और सबको विनती करूँगा, अपने अपने धर्म के अनुसार आप भगवान से कॉन्टैक्ट करने का प्रयास कीजिए, हाँ, तब हमारा सबका जीवन जो है सफल, धन्य और आनंदमय हो जाएगा। यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लाइफ जो है उसको कहा गया है कि बहुत बड़े दुखमय स्थिति में भी आनंदमय कैसे रहा जाए, इसका फॉर्मूला स्पिरिचुअल लाइफ है। टू बी ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ क्राइसिस ऑफ लाइफ, इन द मिडल ऑफ सफरिंग्स ऑफ लाइफ, ये भी हो सकता है, भगवान की कृपा से आत्मा को शक्ति प्राप्त हो सकती है। न केवल सुख में सुखे रहना, पर भयंकर दुख में भी हम हंसते हुए रह सकते हैं, ये रहस्य केवल भगवान की कृपा में छुपा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।